सप्ताह भर की क्रिकेट सरगर्मियों को इस पॉडकास्ट में समेटे मैं हाजिर हूं। स्वीकार कीजिए संजय बैनर्जी का नमस्कार। सुनो दिल से। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल दो पड़ोसियों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है। ऑस्ट्रेलिया के पास ICC ट्रॉफीज की कमी नहीं है, लेकिन T20 ट्रॉफी पर अब तक उसकी पहुंच नहीं हो सकी है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड को ऐसी टीम के तौर पर देखा जा रहा है जो कप्तान केन विलियमसन के नेतृत्व में लगातार बेहतर कर रही है। 2019 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में उसे एक बेहद रोमांचक मुकाबले में शिकस्त से 2-4 होना पड़ा, लेकिन जल्दी ही उसने भारत को हराकर पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। अब न्यूजीलैंड क्रिकेट के तीसरे और सबसे छोटे फॉर्मेट के भी फाइनल में पहुंच चुका है, यानी एक ओर अतीत है तो दूसरी ओर वर्तमान और संभवतः भविष्य भी। दोनों टीमें जिस तरह निर्णायक दौर तक पहुंची वो उनके जज्बे को दर्शाता है। क्रिकेट का ये सबसे छोटा फॉर्मेट लोकप्रियता के शिखर पर क्यों है, ये दोनों सेमीफाइनल्स को देखकर समझा जा सकता है। लीग दौर में दबदबा कायम रखने वाली इंग्लैंड के मुंह से किवीज ने जीत का निवाला खींच लिया। तकरीबन हारी हुई बाजी को नीशम और डेरिल मिचेल जीत में बदल गए। उसी तरह स्टॉइनिस और मैथ्यू वेड ने पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। शादाब खान की बेहतरीन गेंदबाजी भी लीग दौर में अविजित रहने वाले पाकिस्तान को फाइनल तक नहीं पहुंचा सकी। एक बात साफ है, चाहे दुबई हो या अबुधाबी, हर जगह शाम के मैच में चेज करने वाली टीम को लाभ मिला है, क्योंकि लक्ष्य के हिसाब से वो अपनी गति तेज और धीमी कर सकते हैं और शबनम का असर बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम पर भी साफ दिखाई दिया है। उधर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिहाज से T20 वर्ल्ड कप पहले दो मैचों के बाद ही समाप्त हो चुका था। बची खुची कागजी संभावनाएं न्यूजीलैंड के अफगानिस्तान से जीतते ही खत्म हो गईं। भारत का इस तरह सेमीफाइनल तक न पहुंच पाना न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए परेशानी का सबब था, बल्कि क्रिकेट से जुड़े आर्थिक ताने बाने के लिए भी नुकसानदेह था। भारत अगर फाइनल तक पहुंचता तो दुनिया की दिलचस्पी सातवें आसमान पर होती और वर्ल्ड कप से मिलने वाला मुनाफा भी। वर्ल्ड कप से बाहर होने की निराशा के बीच भारत में क्रिकेट के अब नए युग की शुरुआत हो रही है। T20 कैप्टन के रूप में विराट कोहली की जगह इस ओहदे को अब रोहित शर्मा संभाल रहे हैं, जबकि रवि शास्त्री की जगह राहुल द्रविड़ अब भारत के नए हेड कोच हैं। शास्त्री कोहली की जोड़ी ने ICC टूर्नामेंट को छोड़कर वो सब कुछ हासिल किया जिसकी उम्मीद कोई देश कर सकता है। इस दौरान हाल फिलहाल 36 रन पर सिमटने के बाद भारत का टेस्ट जीतना और इंग्लैंड में पहले टेस्ट में हारने के बाद बैक टू बैक मैच जीतना बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। तमाम सफलताओं के बावजूद शास्त्री और कोहली युग की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे आता रहा, बड़ी वजह लोग एरोगेंस भी मानते हैं। बहरहाल द्रविड़ और रोहित शर्मा की नई जोड़ी पर अब जिम्मेदारी है कि वे भारतीय क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में स्वर्ण युग तक पहुंचाएं। दोनों के लिए पहला लिटमस टेस्ट 5 दिन बाद शुरू होने वाली सीरीज होगी, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 3 T20 इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैच में आमने सामने होने वाली हैं। पहला मैच जयपुर में 17 नवंबर को खेला जाएगा। दोनों देशों ने इस सीरीज के लिए अपनी टीमें डिक्लेयर कर दी हैं। भारत ने विराट कोहली सहित चोटी के कुछ प्लेयर्स को आराम दिया है और कई युवा प्लेयर्स को इंक्लूड किया है। इनमें ऋतुराज गायकवाड़, हर्षल पटेल, आवेश खान और वेंकटेश अय्यर के नाम शामिल हैं। अब रोहित शर्मा की टीम को T20 सीरीज में लोकेश राहुल, चहल, अश्विन, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर जैसे खिलाड़ियों के सहारे अपनी चमक दिखाने की जरूरत है। न्यूजीलैंड ने भी वर्ल्ड कप में खेल रही टीम में थोड़े बदलाव के साथ भारत दौरा करने का फैसला किया है। साथ ही 2 टेस्ट की सीरीज के लिए भी न्यूजीलैंड ने जो टीम डिक्लेयर की है उसमें स्पिनर्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। टीम में स्पिनर्स के रूप में कुल 5 विकल्प मौजूद हैं। इधर भारत ए की टीम भी डिक्लेयर कर दी गई है जो दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। इस टीम को 4 दिनों के 3 मैच खेलने हैं और प्रियंक पंचाल को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स को भी मौका दिया गया जिसने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ नए नामों में सौरभ कुमार, उमरान मलिक, अर्जुन नागवासवाला और उपेंद्र यादव शामिल हैं। इस टीम में पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिकल और राहुल चहर भी शामिल हैं। इस बीच भारत का घरेलू क्रिकेट अब उड़ान ले चुका है। इस दौरान एक दुखद खबर यह भी आई कि कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट देने वाले दिल्ली के जाने माने कोच तारक सिन्हा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके कैंप से सुरेंद्र खन्ना, मनोज प्रभाकर, शिखर धवन और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी निकले हैं। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत में भी इसी फॉर्मेट के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का अब नॉकआउट चरण आ पहुंचा है। 16 नवंबर से इसके मैच दिल्ली में खेले जाएंगे। ग्रुप चरण के अब तक के मैचों में हैदराबाद के बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल 302 रन और हैदराबाद के ही गेंदबाज मिलिंद 16 विकेट लेकर सबसे आगे हैं। शुरुआत के लगातार 3 मैचों में अर्धशतक जमाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ बाद के मैचों में इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सके, लेकिन अजिंक्य रहाणे जरूर 4 अर्धशतक जमाकर टॉप 3 में शामिल हैं। पुरुषों की अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी का खिताब इंडिया डी टीम ने इंडिया बी टीम को हराकर जीत लिया। बेंगलुरु में इसके मैचों में कुल 9 शतक लगे। महिलाओं की अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी भी खेली गई, जिसमें इंडिया बी ने इंडिया डी को पराजित करके खिताब अपने नाम कर लिया। महिलाओं की सीनियर वनडे प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले बेंगलुरु में कल से शुरू होंगे। इससे पहले ग्रुप मुकाबलों में 6 प्लेयर्स ने 300 से ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि कुल 27 शतक इस दौरान लगे हैं। कभी प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स में शामिल रहे उन्मुक्त चंद ऑस्ट्रेलिया के पुरुष बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी होंगे। उनका अनुबंध मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ हुआ है। 28 साल के उन्मुक्त अमरीकी लीग में भी खेल चुके हैं और वो चाहें तो 2024 से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेल सकते हैं। वैसे भारतीय महिलाएं ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में लगातार धमाल मचा रही हैं। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिक्स के अलावा पूनम यादव भी चमक रही हैं। हरमनप्रीत और जेमिमा मेलबर्न के लिए खेल रही हैं और दोनों के प्रदर्शन से उनकी टीम मेलबर्न अंक तालिका में टॉप पर बनी हुई है। इस लीग का अगला राउंड कल से खेला जाएगा। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले हफ्ते क्रिकेट की नई सरगर्मियों के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। अनुमति दीजिए संजय बैनर्जी को और चलते रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार।